आप सभी को मेरा यानी कामायनी का नमस्कार। मेरे साथ है मेरे को-होस्ट कबीर।
जी हाँ, और हम दोनों लेकर आए हैं आप सबके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम हमसे है देश, और आज है उसकी 16वीं कड़ी। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमसे है देश कार्यक्रम में हम बात करते हैं लोकतंत्र की, आपके अधिकारों की, भारत के संविधान की।
पता है कबीर, भारत के संविधान की सबसे अच्छी बात क्या है? मैं बात कर रही हूँ धर्म निरपेक्षता की।
और हमारा देश किसी एक धर्म को किसी और धर्म से बड़ा या छोटा नहीं मानता, और हमारे देश की शासन प्रणाली किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं मानती। वैसे संविधान की बात से मुझे याद आ रहा है कि बुलबुल बाग के कागज़े कायदा में भी कुछ बदलाव लाए गए।
हाँ, तो चलो बेताल से ही सुनते हैं कि वो कौन से बदलाव थे, हमारे अगले सेगमेंट बेताल छब्बीसी में।
तो चलिए आप भी सुनिए हमारा अगला सेगमेंट बेताल छब्बीसी।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, आज लोकतंत्र की कौन सी घुट्टी पिलाओगे?
बहुत ही मजेदार किस्सा है जो तुम्हें सुनाना है, सुनो। असल में एक दिन काव काव कौवे ने भोले भालू को एक झरने के किनारे एक अजीबो गरीब स्थिति में देखा।
अच्छा।
एक टांग ऊपर किए हुए, अपनी बाहें फैलाए भालू कुछ बड़बड़ा रहा था। भालुओं को उसने ऐसे कभी नहीं देखा था, इसलिए पूछ बैठा।
आ, आ, अरे भोला, तुम्हें क्या हुआ? ये भला कैसी मुद्रा है?
ये मैं जल प्रताप महाशय को नमन कर रहा था।
क्या क्या जल प्रताप? अरे वो कौन है भाई? हम सब तो इसे झरना बुलाते हैं, तुम्हारे इस अलग नाम का कारण?
एक दिन जब मैं भूखा प्यासा घर से निकला तो रास्ते में ये झरना दिख गया। मैं चलते चलते इसके कोने तक आया और तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं झरने के बहाव में नीचे गिरने लगा। ऐसा लगा कांव कांव भैया कि उस दिन मछलियों की खोज मुझे मार डालेगी। पर
क्या?
पर कांव कांव भैया, मैं नीचे पहुंचते ही देखता हूँ कि ना सिर्फ मैं जिंदा हूँ बल्कि मेरे आसपास ढेरों ढेर मछलियां फुदक रही हैं। हाँ, अरे अरे, ये तो मछलियों का खजाना है, खजाना। हाँ, जय हो जल प्रताप महाशय की, जय हो जल प्रताप महाशय की। अरे कहाँ कहाँ भैया, अब तो मैं यहाँ रोज आता हूँ, रोज, और हर रोज मछलियों को निगलने से पहले इसे नमन करता हूँ। हाँ,
ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो मैं तो चलता हूँ।
ठीक है काव काव।
काव काव चला तो गया, पर उसके पेट में ये बात पची नहीं थी। भोले भालू की ये बात पूरे बुलबुल बाग में फैल गई। आसपास बहुत सी बातें होने लगी। बातोनी बंदर कहता,
कभी किसी जानवर या पक्षी को किसी को पूछते हुए देखा है? ये जानवरों का काम कब से हो गया? हुकुम चंद, तुम भी ध्यान दो, तुम हंसों में कोई ऐसा ना निकल आए।
हम हंसों में ऐसा नहीं होने वाला कभी। हाँ, सारसों का पता नहीं, आजकल सारसों ने रंग बदल लिए हैं वैसे।
अच्छा,
क्यों शेख चंद सारस?
हुकुम चंद, रंग बदले नहीं, वो बस अब अपने रंग ढूंढ रहे हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, हम सब सारस उड़ान भरने से पहले हर दिशा में अपने पंख तीन बार फड़फड़ाते हैं। हम में से कई तो हवा को हमारी सहायता करने के लिए आग्रह भी करते हैं। तो क्या पता भोला भालू भी अपना रंग ढूंढ रहा हो और उसे मिल गया।
और हुकुम चंद, मैं ये भी कहता हूँ कि ये भोला भालू पागल हो गया है, उसका बहिष्कार करना चाहिए, वरना ना जाने कितने और पशु पक्षियों को पागलपन की बीमारी लग जाएगी। हाँ,
अरे तुम कमाल करते हो बातूनी, कभी तुम उस घुमक्कड़ को निकालने की बात कर रहे थे, कभी कोई टूटा राम को निकाल देना चाहता था, और अब तुम सब भालू को भी। अरे सबको बाहर निकालते रहोगे तो बुलबुल बाग में बचेगा कौन?
सभी चपल चींटी के पास गए।
देखो, जब भी कोई मुश्किल आई है हम सब ने एक ही तरफ रुख किया है, कागज़े कायदा की ओर।
कागज़े कायदा में सबको बराबरी का हक है और हर जानवर और पक्षी के हक उसमें सुरक्षित है।
तो बस आज से कागज़े कायदा में आस्था का एक पन्ना जोड़ दिया जाएगा और हर जानवर पक्षी को ये झूठ है कि यदि उसे किसी प्रकार की आस्था हो तो वो उसे निभा सकता है। बुलबुल बाग और उसका लोकतंत्र उसके और उसकी आस्था के बीच नहीं आएगा।
तो देखा आपने, चपल चींटी हमेशा ही न्याय का पक्ष लेती है, और ये बुलबुल बाग के लिए कितनी बड़ी छलांग थी कि भालू की आस्था को जगह दी गई।
कबीर, अगर तुम इतिहास के पन्ने पलटोगे ना तो तुम्हें हमारे इतिहास में ऐसी धर्म निरपेक्षता की बहुत सी कहानियां मिलेंगी। और तुम संत कबीर के बारे में तो जानते ही होगे ना, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त थे।
बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आओ देश विदेश में संत कबीर को और करीब से जानते हैं, सुनते हैं उनकी कहानियां हमारे अगले सेगमेंट देश विदेश में। जब भी भारत में धर्म के नाम पर विवाद और कड़वाहट बढ़ी है, हमारे कवियों लेखकों ने लोगों में बंधुता की भावना को फिर से जगाया है। ऐसे ही थे संत कबीर। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के एक महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उन्होंने जीवन की रोजमर्रा की बातों को लेकर बहुत सुंदर दोहों की रचना की, जिनमें जीवन दर्शन, आध्यात्म, धर्म निरपेक्षता के कई पहलू देखने को मिलते हैं। उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। एक और दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का कोई मूल्य नहीं होता। 1680 में जन्मे बुल्ले शाह भी कबीर की तरह ही खुले विचारों के थे।
चल बुल्लिया चल ओथे चली।
वो अपने समय के एक पंजाबी सूफी संत और कवि थे।
जिथे सारे अन्ने,
उनकी कविताओं को काफियां कहा जाता है। अपनी एक रचना में वो कहते हैं, मक्का गया गल मुक्ति नहीं, पावे सौ सौ जुम्मे पढ़ आइए, गंगा गया गल मुक्ति नहीं, पावे सौ सौ गोते खाइए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्ति, जदो मैनू दिलों गवाइए। यानी कि मक्का जाना अंतिम पड़ाव नहीं है, चाहे सौ सौ बार प्रार्थना कराओ। गंगा के घाट पर जाना भी अंतिम पड़ाव नहीं है, चाहे सौ सौ बार गंगा नहा लो। बुल्ले शाह कहते हैं कि अंतिम पड़ाव तो तब आता है जब दिल से घृणा, नफरत और अहंकार यानी कि मैं खत्म हो जाए। अगले धर्म निरपेक्ष प्रचारक जो ध्यान में आते हैं वो हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, जिससे हमें अकबर की धर्म निरपेक्ष नीतियों के बारे में पता चलता है।
तो क्या हम अपने अगले सेगमेंट एक था नागरिक में चले और लोगों से जाने कि अनेकता में एकता से वो क्या समझते हैं।
एक था नागरिक,
नागरिक,
एक था नागरिक,
नागरिक। अब बहन जी देखो, अनेकता और एकता की बात तो ये है, तो जैसे होता है ना एक मतलब बाग है, बाग में बहुत तरह के फूल खिलते हैं जी, तो उसमें है तो सब बाग का हिस्सा ना। अब फूल कई तरह के हैं और पक्षी पशु भी होते हैं वहाँ पे, तो वो भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन वो सब उसी बाग का एक हिस्सा होते हैं। या ये समझ लो कि अब देखो बाजार में सब लोग घूम रहे हैं, हैं जी, सब धर्मों के लोग घूम रहे हैं, सब जातियों के भी होंगे, इनसे पूछो कौन कौन सी जाति हैगी तो बता देंगे, लेकिन हम सब भारत के निवासी हैं ना, भारतवासी हैं, तो यही अनेकता में एकता है जी, और क्या है।
मैं समझती हूँ कि भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, आप हर थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको हर जगह अलग लैंग्वेज, अलग वेशभूषा, अलग शक्लें, अलग रीति रिवाज, अलग परंपराएं, संस्कृति, सब कुछ अलग अलग मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी, भारतीय, तो वही हमारी अनेकता में एकता है।
पूरा भारत ही इस चीज़ का उदाहरण है। एक उदाहरण कैसे दिया जा सकता है इस चीज़ के लिए? हमारी सेना बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। हर एक प्रांत, पंथ, समाज, रिलीजन से लोग आते हैं और एक साथ रहते हैं।
अनेकता में एकता, मुझे सबसे अच्छी बात यूनिवर्सिटी की यही लगती है। एक ही जगह, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से बच्चे होते हैं और हम सब लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ एक फ्लैट में, मेरे ही फ्लैट में मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एक राजस्थान से है, एक यूपी से है और एक नॉर्थ ईस्ट से है, और हम सब लोग मिलके बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अलग अलग हैं, तो हम लोग फील करते हैं कि हाँ हम लोग एक ही हैं।
अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक क्विज क्वेश्चन, जिसका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस।
बिल्कुल, तो आज का सवाल है, धर्म निरपेक्षता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल की गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए डायल कीजिए 07966210428। ये कॉल निःशुल्क है। दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन के लिए बटन दबाइए। और अब बारी है थोड़े से मनोरंजन की।
आज का जो हमारा गीत है वो रब्बी शेंगिल की आवाज में है, बुल्ला की जाना मैं कौन।
बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन वेच मसीता, ना मैं वेच कुफारतियां रीता, ना मैं बातां वेच पलीता, ना मैं दरवेद कताबा, ना मैं रहिंदा पांगी शराबा, ना मैं रहिंदा मस्त खराबा, ना मैं शादी ना गम ना की, ना मैं वेच पलीती पाकी, ना मैं आभी ना मैं काकी, ना मैं आतश ना मैं पौन।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है।
तो अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे ढेर सारी जानकारी, किस्से और कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार।